नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। श्री नड्डा ने कहा कि गठबंधन के सभी दलों ने इस निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना है, जिससे उपराष्ट्रपति चुनाव आम सहमति से संपन्न हो। चुनाव 9 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नामित करने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्णय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में श्री राधा कृष्णन ने अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी विशेष पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राधा कृष्णन ने विभिन्न पदों पर रहते हुए सामुदायिक सेवा और कमजोर लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। श्री मोदी ने कहा कि श्री राधा कृष्णन को विधायी और संवैधानिक मामलों का भरपूर ज्ञान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी श्री राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नामित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से भारत में बने उत्पादों पर भरोसा कर उन्हें खरीदने का आग्रह किया। नई दिल्ली में कल लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदें। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, अपनों के साथ अपने लोकल उत्पादकों की खुशियां बांटें। आप तय करें गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को मजबूत बनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रपिता के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग के दूसरे खंड के शुरू होने से एनसीआर में कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान श्री वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी उनके साथ बैठक करेंगे। भारत और नेपाल ने सहयोग और साझेदारी को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज काठमांडू में कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वे नेपाल की दो दिन की सरकारी यात्रा पर हैं। श्री मिश्री ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से राष्ट्रपति कार्यालय में मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने से जुड़े मामलों पर चर्चा की। बाद में श्री मिश्री ने नेपाल के विदेश मंत्री अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कठुआ जिले के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बादल फटने से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। डूरंड कप फुटबॉल 2025 के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट बंगाल एफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट को हरा दिया है। ईस्ट बंगाल सेमीफाइनल में अब डायमंड हार्बर से खेलेगा। भारत की देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। देविका जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा रही थी। दिल्ली पर्यटन विभाग आज गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।